बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है एवं दूर से दूर भी वही है तथा नजदीक से नजदीक भी वही है और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। व्याख्या ये तत्व का वर्णन 12वें श्लोक से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है, उनमें यह 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है, अतः यह श्लोक इस प्रकरण का मूल सार है। बहिरन्तश्च भूतानाम अचरन् चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो वह घड़े के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वो खुद भी बर्फ से बने होने के कारण जल ही है, ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम 7:19 और अपनी दृष्टि से सदसच्चाहम अर्जुन 9:19 में कहा है। दूरस्थम चांति के चतत, किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक भी पर वे ही परमात्मा है, पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, संपूर्ण वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महतत्व है, महतत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस पर परमात्मा दूर से दूर हो गए, दूर से दूर होते हुए भी परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति के नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक अहम है और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है, परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वालों के लिए परमात्मा दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सन्मुख है उसके लिए परमात्मा अत्यंत नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम्, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा? नहीं, उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखाई देता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है, वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे ओड़े आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां मन बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है, जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को ये शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ है, ये दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते। परंतु जिनको परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्म तत्व को गे भी कहा गया है। इसी 13वें अध्याय का 12वां श्लोक और 17वां श्लोक, और अविज्ञेय भी कहा गया है, जो यही 15वें श्लोक में कहा है, सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम्। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए तो यह ज्ञेय है, और मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि को कोई मिटा नहीं सकता, परंतु जब पारमार्थिक मान्यताओं को कौन मिटा सकता है, जो कि वास्तविक है। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रियां मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रिया मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिया मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति के कार्य और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, करण में नहीं, अर्थात मन बुद्धि में नहीं। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन से नहीं होती। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई, है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं।